नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। योजना में जोधपुर और पाली भी शामिल। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा के उपायों पर चर्चा। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन कल से जयपुर में। और प्रदेश के विभिन्न बांधों और जलाशयों में पानी की आवक जारी। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी का स्तर 314.3 आरएल मीटर हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,600 करोड़ रूपये से ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान में जोधपुर और पाली को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों शहरों के लिए परियोजना लागत 922 करोड़ रुपए रहेगी। इन शहरों में 7,500 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया है और रोजगार के 40,000 अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा के अल्पकालिक उपायों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के बारे में सुझाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कार्यबल का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनटीएफ को सुझाव देने से संबंधित शीर्षक से एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर कोई भी अपने सुझाव भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यबल को निर्देश दिया है कि वो अपनी अंतरिम रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 2 महीने के भीतर सौंप दे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज बीकानेर जिले की सांचू बीएसएफ पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से संवाद किया और बॉर्डर एरिया की चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने देश की रक्षा के लिए जवानों की प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की। राज्यपाल ने वहां निर्मित वॉर म्यूजियम भी देखा। उन्होंने सीमा पार से अवैध तस्करी, नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। श्री बागड़े ने सीमा चौकी पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। राज्यपाल ने जिले के सीमांत क्षेत्र के गांव गोडू के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गोडू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी भी ली। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा है कि सरकार किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। श्री दक आज जयपुर में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गौपालक किसान परिवार को 1 लाख रूपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण 1 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। गौपालक किसान को समय पर ऋण चुकाने पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि गौपालक किसान परिवारों को गाय भैंस के लिए शेड, खेली निर्माण, चारा बांट सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्री दत्त ने कहा कि ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ऋण आवेदन से लेकर मंजूरी तक के सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का दो दिन का सम्मेलन कल जयपुर में शुरू हो रहा है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल ने बताया कि दो दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न सत्र होंगे।
इन दो दिनों में पुलिसिंग रिलेटेड बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी जाएगी। हमने बाहर से गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाया है जो विभिन्न विषयों पर अपने व्यूज को शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे जिलों में जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं और पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो सीनियर अधिकारी हैं उन सबके द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक तरीके का ब्रेनस्टॉर्मिंग करें पुलिसिंग संबंधी जो आज के वातावरण में महत्वपूर्ण विषय है उन पर, और उन विषयों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें ये देखना है कि हम कैसे अपनी पुलिसिंग को और बेहतर बना सकते हैं।
प्रदेश में 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया जाएगा। इस माह की तैयारियों को लेकर आज समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक ओपी बुनकर ने वीसी के माध्यम से जिला उपनिदेशकों और सीडीपीओ के साथ तैयारियों की समीक्षा की। श्री बुनकर ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से आयोजित होने वाले इस अभियान में विभिन्न थीम्स पर कार्यक्रम होंगे।
माह के दौरान 6 विशेष गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की है। इसकी विस्तृत जानकारी सभी सीडीपीओ को, डीडीओ को, एएस को दी गई है ताकि पोषण का महा जो हर साल अपन में मनाते हैं जोर शोर मनाया जा सके। विशेषकर इसमें एक जन आंदोलन का रूप देने का आग्रह किया गया है ताकि आम जन को इससे जोड़ा जा सके, क्योंकि महिलाएं बच्चे हमारे जो स्टेक होल्डर्स है कुपोषण के कारण से इस विभाग में आवश्यकता है।
बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आज 3 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। सागरबाई, जयपाल सिंह और अजमल सिंह को भारतीय नागरिकता दी गई है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता से संबंधित शपथ दिलाई और नागरिकता हासिल करने पर इन लोगों को शुभकामनाएं दी। शाहपुरा के जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने आज युवाओं के मार्गदर्शन के लिए साईपेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जिले के युवा जिला स्तरीय अधिकारियों से सीधा संवाद कर सकेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस ऐप से युवा जिले की सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए जो साईपेट नाम का जो ऐप हमने जो लॉन्च किया है उसका उद्देश्य यही है कि जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है या जो सारे अखबार वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर बहुत सारी चीजों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, जैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से कॉम्पिटिशन फाइट किया जा सकता है, किस तरह से इंटरव्यू दिया जा सकता है और किस तरह से विदेशों में जाके पढ़ाई की जा सकती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स है और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो लोन फैसिलिटीज है जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की या जो भी है ये सब एक प्लेटफॉर्म पे उनको मिल जाए इसके लिए हमने तैयार किया।
राज्य के कई जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। डीग में भी इसी तरह का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। हमारी डीग संवाददाता ने बताया कि शिविर में प्रशिक्षण लेने के बाद शिक्षिकाएं अपने अपने स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देंगी।
जिले के लाला मनोहर लाल राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिविर में ब्लॉक की शारीरिक शिक्षिकाएं आत्मरक्षा में प्रशिक्षित हो रही हैं। इस शिविर में महिला शिक्षिका प्रशिक्षित होकर अपने अपने स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करेंगी, जिससे बालिकाओं में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दी।
और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। सिरोही के माउंट आबू के अलावा श्रीगंगानगर के कुछ स्थानों पर 70 से 90 मिलीमीटर तक बरसात दर्ज हुई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज भी मूसलाधार बारिश हुई है। श्रीगंगानगर में तेज बरसात के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके अलावा चूरू, भरतपुर, धौलपुर में हल्की से मध्यम बरसात हुई है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न बांधों और जलाशयों में लगातार पानी आ रहा है। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी का स्तर बढ़कर 314.3 आरएल मीटर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बाड़मेर और जैसलमेर जिले में कई जगह भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। आगामी 48 घंटे में भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग में 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। गुजरात में हो रही भारी बारिश का असर प्रदेश के रेल यातायात पर भी पड़ा है। पिछले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम रेलवे से चलने वाली 12 ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गुजरात में तेज बारिश के चलते वडोदरा मंडल के ब्रिज संख्या 561 पर जल भराव हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की 21 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वहीं 9 रेलों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। इनमें जोधपुर और पाली भी शामिल हैं। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा के अल्पकालिक उपायों पर चर्चा की गई। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। और प्रदेश के विभिन्न बांधों और जलाशयों में पानी की आवक जारी है। टोंक के बीसलपुर बांध में पानी का स्तर 314.3 आरएल मीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।